नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में भागलपुर दुमका रामपुर हाट सिंगल रेलवे लाइन खंड के 177 किलोमीटर लंबे दोहरीकरण को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना पर लगभग 3169 करोड़ रुपए की लागत आएगी। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंत्रिमंडल के निर्णय के बारे में कहा कि इससे आवाजाही में सुधार होगा।
भागलपुर दुमका रामपुरहाट डबलिंग, ये प्रोजेक्ट बिहार, झारखंड और बंगाल को जोड़ने वाला एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है। इस डबलिंग के बाद में भागलपुर से दुमका और उससे सीधा रामपुरहाट की तरफ गाड़ियां जा सकेगी और बहुत बड़े तीर्थ स्थल देवघर धाम को भी जोड़ता है ये। और साउथ बिहार को जो बड़ी कनेक्टिविटी चाहिए होती है टुवर्ड्स कलकत्ता, टुवर्ड्स साउथ, वो कनेक्टिविटी इस प्रोजेक्ट से मिलती है।
मंत्रिमंडल ने बिहार के बक्सर भागलपुर हाई स्पीड कॉरिडोर के अंतर्गत मोकामा मुंगेर खंड के 4 लेन के निर्माण को भी मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने आज भारत इटली रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। टेलीफोन पर हुई बातचीत में दोनों नेताओं ने यूक्रेन संघर्ष को शीघ्र समाप्त करने में अपने साझा हितों पर भी सहमति व्यक्त की। नेपाल में हिंसक विरोध प्रदर्शनों और झड़पों के बाद बिहार में भारत नेपाल सीमा पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। मधुबनी जिले के पुलिस अधीक्षक ने बताया कि सभी सीमावर्ती थानों को हाई अलर्ट पर रखा गया है और नेपाली अधिकारियों के अनुरोध पर नेपाल के जनकपुर और भारत के जयनगर के बीच रेल सेवाएं स्थगित कर दी गई हैं। वहीं उधर उत्तराखंड से सटी भारत नेपाल सीमा पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सीमावर्ती क्षेत्रों में एसएसबी और पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से गहन जांच, गश्त और तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। नेपाल में युवाओं के प्रतिनिधियों के एक समूह ने आज शाम काठमांडू में पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की को अंतरिम सरकार का नेतृत्व करने के लिए प्रस्तावित किया है। हालांकि इस प्रस्ताव पर असंतोष व्यक्त करते हुए कई युवा इस निर्णय का विरोध करने लगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि कई दिनों के हिंसक विरोध प्रदर्शनों के बाद राजधानी काठमांडू में शांति लौट आई है और अंतरिम सरकार बनाने की चर्चाएं तेज हो गई हैं। नेपाल के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इस हिंसक विरोध प्रदर्शन में अब तक 30 लोगों की मृत्यु हो गई है और 1000 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। केंद्र सरकार ने हाल में जीएसटी दरों में बदलाव के बाद पूर्व पैक वस्तुओं के निर्माताओं, पैकर्स और आयातकों को 31 दिसंबर तक बिना बिके स्टॉक पर संशोधित अधिकतम खुदरा मूल्य एमआरपी घोषित करने की अनुमति दे दी है। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के इस अधिसूचना के अनुसार वस्तुओं पर मूल एमआरपी दिखाई देनी चाहिए। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स नई दिल्ली ने आज छात्रों की आत्महत्या से निपटने और मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता बढ़ाने के लिए नेवर अलोन नामक एक एआई आधारित मानसिक स्वास्थ्य और वेलनेस कार्यक्रम शुरू किया। विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस पर एम्स ने छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य में सुधार के लिए एआई आधारित नेवर अलोन ऐप लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य है कि छात्रों में डिप्रेशन के मामले कम हो और आत्महत्या को रोका जा सके। जनजातीय कार्य राज्य मंत्री दुर्गादास उइके ने आज नई दिल्ली में दुनिया के पहले डिजिटल जनजातीय विश्वविद्यालय आदि संस्कृति का शुभारंभ किया। श्री उइके ने बताया कि ये राष्ट्रीय और वैश्विक दर्शकों के लिए आदिवासी कला, संस्कृति, शिल्प और जानकारी का एक ऑनलाइन बाजार है। मौसम विभाग ने कल उड़ीसा के कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा की संभावना जताई है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बिहार, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर राज्यों के कुछ हिस्सों में भी अगले 2-3 दिनों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। भारत ने एशिया कप क्रिकेट प्रतियोगिता में अपना अभियान जीत के साथ शुरू किया। दुबई में खेले गए आज के मुकाबले में भारत ने संयुक्त अरब अमीरात को 9 विकेट से हरा दिया। भारत ने 1 विकेट पर 60 रन बनाकर 4.5 ओवर में ही मेजबान टीम के 58 रन के लक्ष्य को हासिल कर लिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।